पृष्ठ 50, नंबर 1, कविता। उसे मालूम है कि शब्दों के पीछे कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं, और हत्या अब लोगों की रुचि नहीं, आदत बन चुकी है। वह किसी गंवार आदमी की ऊब से पैदा हुई थी और एक पढ़े लिखे आदमी के साथ शहर में चली गई। व्याख्या। प्रस्तुत कविता में रचनाकार ने कविता के पारंपरिक उपादानों और उसके प्रभावों को बिल्कुल नए अंदाज में, सर्वथा नए संदर्भों को समाहित करते हुए कविता का विचार और व्यवहार पक्ष प्रस्तुत किया है। कविता के निकट परिचयता का सा आभास कराते हुए एक वकील की सी भाषा में उसके उदय, वर्ण, विषय और अभाव को अंकित करता हुआ सा प्रतीत होता है। वह कविता के द्वारा किए गए कार्यों को अंकित करता है। वह ब्रैकेट में कविता जानती है कि रचना शब्द धर्मिता ने ना जाने कितने चेहरों में परत पर दे अपनी निर्मम शब्द शक्ति से बेनकाब किए हैं। अर्थात रचनाकार अपने शब्दों की धार से रहस्यों को, परतों को, पर्दों के पीछे छिपे षडयंत्रों को, ऊपर से कुछ और दिखाने वाले झूठे सच्चों को उनके असली चेहरों के साथ समाज के सामने प्रस्तुत कर देता है, करता रहा है। अब आज के संदर्भ में कविता यह अनुभव करने लगी है कि हत्या, आतंक, भय आदि लोगों की रुचि के कारण कविता में नहीं आते, अपितु अब तो हत्या आदि की बातें लोगों की आदत का अंग बन गई हैं। अर्थात भय, आतंक, हादसा, हत्या आदि सब जीवन में इतने छा गए हैं या व्याप्त हो गए हैं, इसलिए अब वे कविता का आवश्यक वर्ण विषय बन गए हैं। मधुर ममता भरी सुकुमार मार्दवता अब कविता के विषय नहीं रहे हैं। कवि का व्यंजनात्मक तर्क है कि कविता का जन्म किसी गंवार आदमी की ऊब उदासी से हुआ होगा ही नहीं, हुआ है। गंवार आदमी से तात्पर्य है कि कविता भावना से जन्मी होगी। कविता तर्क को सहन नहीं करती रही होगी, किंतु अब कविता की वह मनोदशा नहीं रही। वह पढ़े लिखे आदमी के साथ शहर में चली गई से तात्पर्य है कि कविता भावना के माहौल, मानसिकता से निकलकर तर्क के दायरे में शहरी नियम कानून की तरह काव्य शास्त्रीय छंद अलंकरण और नफासत से भरकर सभ्य हुई है और अपने तेवर शहरी भंगिमाओं के साथ साथ बदलती रही है। विशेष उक्त पंक्तियों में कविता के जन्म की भावपूर्ण मनोदशाओं की व्यंजना करते हुए उसे शहर वातावरण में पहुँच कर नए तर्क, नई मारक शक्ति और नई फैशन तक आने की स्थिति का संकेत किया गया है। कविता। एक संपूर्ण स्त्री होने के पहले ही गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश है। लगातार बारिश में भीगते हुए उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है, और कविता हर तीसरे पाठ के बाद नहीं, अब वहाँ कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है। पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों और बलमुती इबारतों में अर्थ खोजना व्यर्थ है। हाँ, हो सके तो बगल से गुजरते हुए आदमी से कहो, लो यह रहा तुम्हारा चेहरा, यह जुलूस के पीछे गिरा पड़ा था, इस वक्त इतना ही काफी है। व्याख्या। शहर में आकर अर्थात शहर के लोगों पर स्थितियों, मानसिकताओं, विवशताओं और आवश्यकताओं को महसूसते हुए कविता का वर्ण विषय भी बदला। जो पहले परिपक्व स्थिति में आकर ही एक सफल रचना बनती थी अथवा बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाती थी, वही कविता वही नागरिक जीवन की स्थितियों, विडंबनाओं, अभावों, मजबूरियों के दबाव में आकर परिपक्व अवस्था से पहले ही युवा आकांक्षाओं के माध्यम होने के रूप में उसी तरह जोश और उत्तेजनाओं का माध्यम बनने लगी, जैसे कोई स्त्री परिपक्व आयु होने से पहले ही गर्भाधान क्रिया से गुजरने के लिए विवश हो गई हो। अर्थात शहर की विडंबनाओं, उत्तेजनाओं, भूखी पीढ़ी की प्रतिक्रियाओं को बिना वैचारिक परिपक्वता के ही कविता रूप अभिव्यक्ति मिलने लगी। यह अभिव्यक्ति असमय अथवा समय से पूर्व ही प्रजनन क्रिया से गुजरने वाली स्त्री द्वारा जन्म देने वाली संतान के समान रचना श्रेष्ठ या कविता तो है किंतु स्वाभाविक नहीं। कविता तो यह है क्योंकि हमें प्रजनन की तरह बाह्य द्वैत संघर्षण और ग्रहण के बाद प्रसव पीड़ा के साथ रचना सृष्टि की पूरी प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ा है, किंतु यह उतनी स्वाभाविक नहीं है जो ऋतु आए फल होए की तरह सहज परिपक्वता का परिणाम हो। शहर की उक्त अभावमयी विवशताओं से गुजरते हुए कविता रूपी स्त्री ने यह जाना कि महानगरों की घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश कितनी कठिन दुर्धर्षतापूर्ण है। इस तलाश में परस्पर परिचय और सानिध्य ही प्यार नाम से जाना जाता है। लगातार बारिश में भीगते हुए साथ साथ रहना, सह अनुभूति से गुजरना और सह आकांक्षा का होना ही जैसे प्रेम प्रजनन के रूप में देखा जाता है, वैसे ही इन परिस्थितियों को झेलना अथवा संवेदना पूर्वक अनुभव करना कविता का वर्ण विषय बना, जो समग्र की संवेदना या अनुभूति का विषय नहीं माना जा सकता। इसलिए शहरी विडंबनाओं से भरी हुई अनुभूति, संयोग क्रीड़ाओं और प्रसव पीड़ाओं का अनुभव जो संजोए रहती है, किंतु उसमें सहजता अथवा स्वाभाविकता न होने के कारण वर्जनीय उत्तेजनाओं को सबके सामने पेश करने का वातावरण नहीं मिल सका। पृष्ठ 51। इसलिए यह अभिव्यक्ति सृष्टि शिशु जन्म व्यवस्थाओं के कारण विवाह रूप में सहज स्वाभाविक सामाजिक संबंध न होने के कारण उस लड़की के गर्भपात के समान ही सिद्ध हुआ जिसे अपने शिशु को जन्म देने पूरे समाज के सामने प्रस्तुत करने का ना तो साहस ही हो और ना अनुकूल वातावरण ही। कवि धूमिल ने यही स्थिति कविता रूप अभिव्यक्त की मानी है। जैसे आंतरिक उन्माद और शारीरिक जोश के कारण अथवा महानगरीय व्यवस्थाओं के कारण लड़की गर्भधारण ही कर लेती है किंतु निश्चय कालावधि तक उसे परिपक्व न कर पाने के लिए विवश है, अतः गर्भपात करा देती है और ऐसा कराते रहने से उसका शारीरिक छीणता के कारण ढल जाती है, धर्मशाला बन जाती है, अर्थात उसकी अपनी कोई अस्मिता या रुचि शेष नहीं रहती। वह शारीरिक संबंधों के प्रति वितृष्णा और अनाकर्षण से भर जाती है। वैसे ही कुछ कविता की स्थिति हो गई है। कवि के अनुसार उस दौरान की कविता भी भौतिक वर्जनाओं, विडंबनाओं, अभावों एवं विवशताओं को झेलती हुई अर्थात धर्मशाला बनी लड़की की तरह अपने हर तीसरे पाठ के बाद अनाकर्षिता रूप में जीवन ढोती रही है, अर्थात भौतिक आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, यथार्थों को बहुत अधिक अभिव्यक्त करने के कारण कविता रुचिपूर्ण अथवा हार्दिक नहीं रही, केवल बौद्धिक बनी रहकर जीवन जीती रही है, अर्थात समकालीन कविता जनरुचि का कारण नहीं बन पाई। नहीं, अब वहाँ कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है। से कभी कहना चाहता है कि कविता के वर्तमान स्वरूप के भीतर जीवन के गहरे अर्थ खोजना व्यर्थ ही है, क्योंकि आज कविता केवल महानगरीय तत्कालिक बोध को ही अभिव्यक्ति देने में जुट गई है। कवि आज की रचना धर्मिता से, खिन्नता से इतना भर उठा है कि खीज उठता है। तभी तो वह कहता है कि आज का रचनाकार भाषा के साथ तस्करों जैसा सलूक कर रहा है। वह इधर उधर से रास्ते में शब्दों को उठाकर वहाँ पेश कर रहा है जहाँ तेज ऊंची कीमत पर बिकते हों या बिक सकते हों। तस्करी के माल जैसे आज की रचना के भाषा संकेत बैल मत्ती इमारतों में ही पृष्ठ 52 सीमित दायरों में ही बिक सकते हैं। कवि धूमिल की दृष्टि में ऐसे तस्करी माल जैसे भाषा शब्द संकेतों वाली कविता में जीवन के गहरे अर्थ खोजना व्यर्थ है। हाँ, कविता की वर्तमान प्रयुक्त भाषा ने एक काम बाखूबी निभाया है। वह यह है कि इस रचना धर्मिता ने आदमी के मुखौटे से ढके चेहरों को उघाड़ा है, बेनकाब किया है। तभी तो वह कहता है कि छद्म का जीवन जीने वाले अथवा भेड़ चाल के रूप में जुलूस में बढ़े जा रहे बगल से गुजरते हुए साथ के आदमी बेखबर आदमी का गिरा हुआ मुखौटा उसके हाथ में थमा दो और कहो कि यह लो तुम्हारा चेहरा, पीछे गिरा पड़ा था। इस वक्त इतना कहना या कर देना ही कविता के लिए, कविता करने वाले के लिए काफी है। तात्पर्य यह है कि आज कविता शब्दों में निहित व्यंग्य की धार से मार करते हुए आदमी के असली चेहरे को ही उजागर कर दे, सामने ले आए, तो यही उसका सबसे बड़ा सामाजिक समय धर्म है। विशेष कवि ने बड़ी गहरी पैठ के साथ आज के रचना धर्मिता के दायित्व बोध को उक्त पंक्तियों में अभिव्यंजित किया है। आज कविता में बड़ी बड़ी बातें करने अथवा भाषा की तस्करी करके शब्द जुटाने का समय नहीं है। आदमी का असली चेहरा पेश कर देना ही कविता के लिए काफ़ी है। बलमुत्ती इमारतों से तात्पर्य बड़े बड़े भवनों में, जहां बैल की तरह खड़े होकर पेशाब करते हैं, बैठकर तस्करी के शब्दों को इकट्ठा कर बनाई गई तथा कथित कविता में अर्थ ढूंढना व्यर्थ बताया है। कविता वह बहुत पहले की बात है, जब कहीं किसी निर्जन में आदिम पशुता चीखती थी और सारा नगर चौंक पड़ता था। मगर अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों में कवि धूमिल पहले की रचना धर्मिता और आज के कवि कर्म के मूल अंतर को अपनी प्रतीक सांकेतिक भाषा में अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि पहले कविता शब्द का इतना प्रभाव था कि निर्जन में अरण्य में काम स्वार्थ मोहित होकर जंगलीपन से भरी कोई घटना होती थी अथवा उस घटना को अभिव्यक्ति मिलती थी तो उसको सुन समझकर सारा शहर चौकन्ना होकर संवेदना से भर उठता था। यहाँ आदिकाल वाल्मीकि के द्वारा क्रौंच वध की घटना को आदिम पशुता की घटना के रूप में संकेतित किया गया है। उस जघन्य शोक भरी घटना को जब कवि ने श्लोक में बांधा तो उसे सुनकर सारा नगर चौंक पड़ा था। अर्थात नागरिक बोध ने जब उस अरण्य रोदन जैसी आदिम पशुता की घटना को श्लोक में कविता में सुना तो निर्जन में रहने वाले उस संवेदनशील रचनाकार वाल्मीकि की वाणी को सुनकर नगरवासी पूरी संवेदना से भर उठे थे। पृष्ठ 53। किंतु आज जब शहर में रहने वाला पाठक श्रोता पढ़ता या सुनता है तो उस वाणी के प्रति कोई ध्यान नहीं देता, यहाँ तक कि वह उसकी उपेक्षा ही करता है, यह सोचते हुए कि आज की कविता घेराव में जी रहे आदमी की विवशता प्रतिक्रिया से जन्मी वह बात है जो हताशा भरे बौखलाए हुए आदमी का छोटा सा एक आलाप संक्षिप्त स्वगत कथन जैसा है, जो वह अपने सीमित दायरे वाले मंच पर उस अभिनेता की तरह रटे हुए ढंग से पढ़ देता है जिसका जीवन और परिवेश से अपना कोई रागात्मक संबंध नहीं है। कविता के रूप में कुछ बोल देना एक नाटक के अभिनय जैसा रह गया है। विशेष प्रस्तुत पंक्तियों में जीवन से जन्मी रागात्मकता के अभाव की व्यंजना कराई है। जब तक रचनाकार जीवन की स्थितियों घटनाओं के प्रति निजता का अनुभव नहीं करेगा, तब तक वह रचना बौखलाहट की एक आलाप जैसी अभिव्यक्ति मात्र ही रहेगी, जीवन से जुड़ी संवेदनापूर्ण वाणी कविता नहीं।